कॉल्ड अ सॉफ्ट सॉफ्ट क्या कहते हैं टारगेटिंग, जिससे आपका जेन मफलूज करने की कोशिश की जाती है, वो उसे पाकिस्तान कामयाब रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ऑल सेड एंड डन, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट काउंट्स मोस्ट इज अल्हम्दुलिल्लाह, आज दुनिया इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान जिस जैसा भी आप हमें समझते हैं, लेकिन दुनिया को भी ये पता चल गया है कि पाकिस्तान तो रोलिंग स्टोन नहीं है, ये ऐसा पत्थर नहीं है जिसका आएगा टुकड़ा मार जाए तो लगातार निकल जाएगा आगे से। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो चट्टान है जो भी से टकरा रहा है, जो भी से टकरा रहा है, वो देखिए आहिस्ता आहिस्ता रेजा रेजा खुद हो रहे हैं वो लोग सारे। अगर भारतीय अपने मुल्क को बताना चाहते हैं तो उनको सिर्फ एक ही हल है, आप कश्मीर का मसला हल कीजिए, उनके अवाम को जो कश्मीरी अवाम है उनकी मांगों के मुताबिक उनको उनका हक दीजिए, असम के उस्मानों को उनका हक दीजिए, खुद आप लेके आए थे, इनको आपने शरीयत ही मंसूख कर दी है, और जो माइनॉरिटीज के साथ जिस तरीके से शुरू किया जा रहा है खत्म कीजिए। अब भारत से पाकिस्तान है उसको फॉलो करेंगे।
बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफा साहब मेरे साथ हैं। मैं यहाँ ये कहती हूँ कि मुल्क आप घर के साथ कंपेयर करके देख लीजिएगा, घरों को चलाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। मैं और आप अगर बच्चे हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएं तो वो घर कभी चलेगा भी नहीं, और अगर हस्बैंड वाइफ की आपस में ना ताल्लुकात अच्छे हों तो आप इमेजिन कीजिए वो घर की फॉल होती है वो। बल्कि बहुत सारे वाकयात भी हैं कि जिन घरों में झगड़ा ज्यादा होता है वहां बेबरकती हो जाया करती होती है। वी हैव टू लिव टूगेदर, वी आर अ फैमिली, गलतियां भी होती हैं। आई विश के बड़े भी इस बात को केयर कर लें कि अगर कहीं गलती है तो उसको रिकनसाइल कर लिया जाए। वी ऑल आर पाकिस्तानी एंड वी ऑल विश ईच अदर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम। यहां से एक और चीज सीखने की है, जनरल साहब ने जो बात की मैं 100% चीजों से एग्री करती हूं। हम इंडिया में कहते हैं कि जात बरादरी है, आई विश के पाकिस्तान के वडेरे जागीरदार इंडस्ट्रियलिस्ट आप लोगों तक पता नहीं मेरी आवाज जाती है कि नहीं, मगर समझ जरूर लीजिएगा कि अमीर और गरीब की तफरीक इतनी होनी नहीं चाहिए जितनी है। कब्र आप सोने के ताबूत में जा सकते हैं मगर अल्टीमेटली तो वही 6 फुट और उतनी जगह ही मिलनी है, और हिसाब किताब वी आर बिलीवर इक्वल हिसाब किताब है किसी अमीर और गरीब के लिए। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियत में से टाइम निकाला। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का हामी नासिर रहे, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में मन सलामती रहे। कोई एक शख्स मरता है तो कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। वी ऑल हैव टू गो, आई विश कि हम अपनी लेगेसी में अच्छी चीजें छोड़ के जाएं। बहुत शुक्रिया सर आपका,
बहुत शुक्रिया।
इफ आई सेड एनी अपोलोजाइज मी,
आपके साथ रहे, आपके नाज़रीन के साथ रहे,
अल्लाह हमारा हामी नासिर रहे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Tanu personal support worker kyon banna chahida hai? Vidya de jeevan vich badlav lyaun layi. Sirf 5 mahinyan vich apna certificate hasil karo ate dekhbhal vich apna career shuru karo. Vadhere janan layi ontario.ca/gopsw te jao. Is layi adayegi Ontario sarkar valon kiti gayi hai.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL बिकॉज वी केयर।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
ویلکم بیک تمام سامعین جو میں سن رہے ہیں 770 ایم ڈیلور پروگرام سازو آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور آپ کا ہمارا ساتھ آج بھی 8:30 بجے تک رہے گا. اور اب سے کچھ ہی دیر میں آپ کے لیے گرما گرم خبریں لے کے شازیا ملک صاحب آ جائیں گی. 7 بجے آپ کے لیے پروگرام پیش کیا جائے گا بھولی بسری یادیں, جسے لیاقت ملک صاحب پیش کرتے ہیں. آج تھرسڈے کا دن ہے تو آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھولی بسری یادیں سن سکیں گے. جناب ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے ٹیلی فون لائن پر اکال مارگیج کے شیراز شفیق ہیں, تو آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شیراز بھائی, کیسے ہیں؟
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ سے ٹھیک ہے
الحمد للہ. شیراز بھائی تھوڑا سا آپ اپنے اکال مارگیج کے بارے میں بتائیے, اپنے بارے میں بتائیے, پھر ہم آج کے ٹاپک پر بات کریں گے.
جی عامر بھائی, ہم لوگ بیسکلی اکال مارگیج والے جو ہیں وہ پچھلے 20-22 سال سے مارگیج انڈسٹری کے اندر ہم لوگ سولوشن بیس رسید پرووائڈ کر رہے ہیں. کسی بھی قسم کی سچویشن ہو, اکال مارگیج اپنے نام اور کام دونوں کی وجہ سے جن جاتی ہے. آپ کو کسی بھی قسم کی مارگیج چاہیے, چاہے آپ کو ریزیڈینشیل مارگیج دیکھ رہے ہیں یا آپ کو کمرشل مارگیج دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی قسم کی آپ کو لائن آف کریڈٹ چاہیے, ہوم اکوٹی لائن آف کریڈٹ چاہیے یا کسی بھی قسم کی آپ کو پلان کر رہے ہیں, جی آپ کو فرینچائز بائی کرنا چاہ رہے ہیں, اکویپمنٹ لون چاہیے, تو ان سب چیزوں کے لیے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. جی میرا نمبر نوٹ کر لیں, شہزاد شفیق اکال مارگیج 416-502-8000.
جی بالکل, شہزاد شفیق کا نمبر ہے 416-502-8000. شہزاد شفیق ویسے تو ہم مختلف ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, تو آج تھوڑا سا بات کرتے ہیں, اکثر لوگ اس بارے میں بات کرنا بھی چاہتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ سیلف امپلائڈ مارگیج کسی کرانا, یا سب سے پہلے بات کریں گے کہ سیلف امپلائڈ کون ہوتا ہے اور اس کی مارگیج جو ہے وہ کیا کس طریقے سے ہوتی ہے, اور کون سے ایسے جو لینڈرز ہیں وہ سیلف امپلائڈ کو جو ہے کر دیتے ہیں, اور آپ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
عامر بھائی ہمارے وہ بہن بھائی جو کہ اپنا کام کرتے ہیں, اپنا کام چاہے وہ آج سے اگر شروع کر رہے ہیں سیلف امپلائڈ, تو وہ آج سے ہی کنسیڈر ہو جاتے ہیں. بیسکلی بزنس اپنا شروع کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ جی اس میں انکم اچھی بنتی ہے, ہمیں کسی کی جاب نہیں کرنی پڑتی. لیکن ہمارے جتنے بھی سیلف امپلائڈ بہن بھائی ہیں یہ انکم اپنی بہت اچھی بناتے ہیں, یہی وجہ کہ یہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی نا کافی زیادہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن جب ان کی پرسنل ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی باری آتی ہے نا, تو یہ کیا کرتے ہیں اپنی اس انکم کے اندر بہت سارے ڈیڈکشن کر کے ایکسپینس ڈال کے اپنی انکم بہت کم شو کرتے ہیں. موسٹلی ہمارے بہن بھائی کیا کرتے ہیں 50-60 تک اپنی انکم شو کرتے ہیں. عامر بھائی میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں, جب یہ انکم لے کے ہمارے بہن بھائی جاتے ہیں نا بینک کے پاس, تو بینک ان کی مارگیج کرنے میں جو نا اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بینک کی کرائیٹیریا کے اوپر پورا نہیں کرتے. تو ہمارے جتنے بھی بہن بھائی سیلف امپلائڈ ہیں, بینک کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ بینک کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جی لاسٹ 2 ایئر کی آپ کی فل ریٹرنز. اب اٹس مین کہ اگر آپ 2 یا 2 سال سے زیادہ سے اس بزنس کے اندر ہو تو پھر آپ بینک کی فرسٹ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہو. دوسری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انکم کی. انکم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے عامر بھائی؟ کہ اگر آپ لینے جا رہے ہو ملین کی مارگیج, جی تو آبویسلی آپ کو انکم چاہیے 200,000 کی. تو 200,000 کی انکم کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ انکم آپ کے نوٹس آف اسیسمنٹ کے اوپر ہو, اور یا پھر لیٹس سے کہ اگر آپ کی $100,000 آپ کی نوٹس آف اسیسمنٹ کے اوپر ہے, تو جو آپ نے بزنس کیا ہوا ہے کارپوریشن کے اوپر اس کے اندر جو نیٹ انکم ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کا جو پرسنٹیج بینک نے سیٹ کی ہوئی ہے اس کے حساب سے آپ بزنس سے انکم نکال سکو. لیٹس سے کہ اگر آپ نے وہاں پہ 200,000 آپ کی نیٹ انکم شو ہوئی ہے, نیٹ انکم کا مطلب یہ ہے کہ سارے ایکسپنس نکالنے کے بعد بزنس کے اندر اتنا آپ کا پروفٹ پڑا ہوگا, تو بینک کہتا ہے یار میرا کرائیٹیریا یہ کہ میں 70% اس کا یوز کر سکتا ہوں. تو 70% تو اس کا اچھا سا بن جائے گا. 100,000 آپ نے پہلے ہی اپنی پرسنل یوز شو کی ہوئی ہے اور 100,000 یہاں سے آپ کی نکل آئے گی تو آپ کی مارگیج ہو جائے گی. لیکن کیونکہ ہمارے بہن بھائی بہت سارے ایکسپنس وغیرہ ڈال کے ڈریشنز کر کے اپنی انکم کم شو کرتے ہیں, تو بینک ان کی مارگیج کرنے سے انکار کر دیتا ہے. میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں عامر بھائی کہ ہمارے پاس ایسے لینڈر کام کرتے ہیں جو اسٹیٹڈ انکم, اسٹیٹڈ انکم کون سی ہے؟ جو آپ نے نوٹس اسسمنٹ کے اوپر شو کی ہوئی ہے 50-60,000, اس کے اوپر بغیر کسی ٹریڈیشنل انکم کی ویریفیکیشن کیے آپ کی جو مارگیج ہے وہ بہت ہی اچھے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ کو کر کے دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے عامر بھائی کہ سارے جو بینک ہیں نا وہ بیسکلی سیلف امپلائڈ کی مارگیج کرنے میں اتنے انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے بینک بھی ان کی پالیسیز کے اوپر نہ کوالیفائی نہیں کرتے, ان کو فل فل ہی نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے بینک اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتے. جو دو بینک کمفرٹیبل ہوتے ہیں ان تک ہر مارگیج ایجنٹ کا ایکسیس ہی نہیں ہے. یہی وجہ عامر بھائی کہ جب ہمارے بہن بھائی ہمارے پاس آتے ہیں نا تو یہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی جو مارگیج کا ٹائم ہوتا ہے وہ نکل چکا ہوتا ہے, کلوزنگ ان کے سر پہ ہوتی ہے, تو پھر ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتی. انہوں نے بروکر کو فائل دی ہوتی ہے, لاسٹ مومنٹ تک یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ خود بھی فالو اپ نہیں کرتے, ऊपर से ब्रोकर ने भी कोई काम नहीं किया होता क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, वो देखते हैं यार लास्ट मोमेंट पे जाकर डालेंगे फाइल इनकी, अगर होगी होगी ना होगी तो ना होगी, वो चांस ले रहे होते हैं। तो होता ये है कि लास्ट मोमेंट पर ये लेके जाते हैं, उस वक्त उनके पास ऑप्शन नहीं होती तो मजबूरन इनको अपनी डील जो है वो प्राइवेट लेंडर से क्लोज करवाना पड़ती है। जब प्राइवेट लेंडर से क्लोज करवाते हैं तो फिर वहां पे इनको प्राइवेट लेंडर की लेंडिंग फी भी पे करना पड़ती है और इंटरेस्ट रेट भी हाई पे करना पड़ता है। फिर ये कहते हैं जी कि हमारे साथ ये हो गया। देखो अगर आपको पता है कि आपकी क्लोजिंग आ रही है तो आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप अगर एक ब्रोकर को फाइल दी हुई है, उन्होंने काम नहीं किया, आप उनसे फॉलोअप कर रहे हो, तो आप दूसरे ब्रोकर के पास चले जाओ, उनसे अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करो और देखो कि आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं ताकि आप लास्ट मोमेंट के ऊपर तंग ना हो, परेशान ना हो। लेकिन अगर आप खुद ही ब्रोकर के साथ मिलकर अपने आपको लास्ट मोमेंट तक लेके जाओगे तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, आपके पास यही ऑप्शन है फिर कि आपको प्राइवेट लेंडर से ही क्लोजिंग करवाना पड़ेगी। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को पता है कि भाई आप लोगों की क्लोजिंग आ रही है तो लास्ट मोमेंट तक का वेट ना करें। अगर आपने किसी ब्रोकर को काम फाइल दी हुई है और उसके ऊपर काम हो रहा है तो उसका फॉलोअप करें। अगर ब्रोकर काम नहीं कर रहा तो आप किसी और ब्रोकर को कॉल करके उनसे अपनी फाइल के मुतालिक डिस्कस करें, अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करें। अब हम लोग अगर आप हम लोगों को अगर आप कॉल करते हो तो हम लोग कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं और इन सब चीजों के हम लोग कोई चार्जेस चार्ज नहीं करते। तो इसलिए अगर आप लोगों की क्लोजिंग आ रही है, आप अपना स्टेरियो डिस्कस करना चाह रहे हो तो आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर नोट कर लो जी, शिराज शफी का कॉल मोर्गेज 416-502-8000।
जी बिल्कुल, शिराज शफी का नंबर 416-502-8000, शिराज शफी का नंबर है। शिराज बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने का।
थैंक यू आमिर भाई, ओके जी,
अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ शिराज शफी अकाल मॉर्गेज के। अगर आपने किसी किस्म की भी मॉर्गेज से रिलेटेड बात करनी है तो शिराज शफीक को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर 416-502-8000। चले जनाब, गर्मा गर्म खबरों के लिए जो है वो खातून जो है वो स्टूडियो में आ चुकी हैं। म्यूजिक बजा देंगे, उसके बगैर तो आती नहीं है। तो रंगारंग खबरों के लिए चलते हैं जनाब। वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 एम डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गई हैं, कोशिश कर रही हैं, बल्कि यूं कह लें अभी हुई नहीं है, कोशिश कर रही हूं शामिल होने की, शाजिया मलिक साहिबा। और गर्मा गर्म खबरों का वक्त शुरू होता है क्योंकि इनके पास टाइम कम मुकाबला सख्त, क्योंकि तकरीबन 7 बजे लैपटॉप भाई ने आना है तो इनके पास टाइम 6:56 तक है। मैंने इनको इतना ही टाइम दिया आज के लिए। आवाज साउंड इफेक्ट आपने सुन लिया होगा। तो आइए तहे दिल से बगैर कोई वक्त वक्त ये काफ जो है ना वक्त वो वाला काफ है, इनका वो इनका वाला नहीं है, केंची वाला नहीं है, ठीक है ना, जो ये कहती है पता नहीं क्या केंची। तो वक्त की कमी की वजह से इनको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं आइए प्रोग्राम में शाजिया मलिक साहबा को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS मेरे अजीज, हम वतनों ठीक हो?
अल्हम्दुलिल्लाह
ठीक हो। अच्छा, एक दिन तुम कंजर्वेटिव बन के आते हो, एक दिन तुम लिबरल बन के आते हो, ये क्या चक्कर है? यानी तुम दोनों पार्टियों से आजकल लिफाफे ले रहे हो?
बी पॉजिटिव
बस इसका मतलब है लिफाफे आ रहे हैं दोनों पार्टी।
बी पॉजिटिव
बट देख लो आज, लेकिन कंट्रास्ट देख लो, तुम आज जो है लिबरल बने हुए, हम कंजर्वेटिव बने हुए, कल तुम कंजर्वेटिव बने हुए थे। तो ये कुछ यहां पे ना कुछ मुझे लग रहा है 770 में कुछ मुकाबला चल रहा है।
नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, हमेशा नेगेटिव को वार देने के लिए पॉजिटिव की जरूरत होती है।
हाँ।
तो वो नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव। तो आप जिस ब्लू पहनेंगे मैं लाल पहन लूंगा तो, मतलब ओवरकम तो करना है ना।
अच्छा, वो नीला जो है उसका जवाब पीला भी हो सकता था।
पीली तो को पार्टी तो नहीं है, पीली को पार्टी होती तो मैं पीला भी पहन लेता। फिर ऑरेंज पहन गया, ऑरेंज है मेरे पास लेकिन वो आजकल उसमें फिट नहीं आ रहा।
अच्छा अच्छा,
है मेरे पास ऑरेंज भी,
ऑरेंज खींच के उसको
ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन है ऑरेंज। तो जरा से अभी वेदर ठीक हो जाए ना, आप नजर भी तो लगा कर रखती है हमारी, हाफ स्लीव शर्ट पहन के आ गए, अगले दिन ही बर्फ पड़ जानी।
नहीं नहीं, अब कोई इम्कान नहीं है,
अब नहीं है,
नहीं है। तो अब आप आदि के बजाय स्लीवलेस पहन, नहीं वो जो पहन के जाते हैं वो एक्सरसाइज वाली, वो आप पहन के आ सकते हैं, ऊपर अपनी जैकेट वगैरह लगा लीजिए।
देखें फैमिली के साथ ये चैनल देखा जाता है, हाँ। मेरी फैमिली भी इस वक्त देख रही होगी।
तो मैंने तुम्हें कब कहा नंगा होकर बैठो तो यहाँ पे, मैंने तुम्हें कहा स्लीवलेस वाला पहन को तुम बैठो, ऊपर तुम अपना जैकेट लगाओ, मतलब मैं बात पूरी नहीं।
अब इन्होंने जैसे ही देखा ना बंदा जो है अटैक कर रहा है तो उन्होंने स्टेटमेंट ही चेंज कर लिया।
नहीं कोई
पहले उन्होंने माना ही नहीं कि एक भी जहाज नहीं गिरा, फिर उन्होंने मान लिया एक कुंग फ्रांस की तरफ से आ गया, तो उन्होंने कहा हाँ शायद पायलट सारे, अच्छा पायलट सारे वापस आ गए। ओ भाई जहाज कितने वापस आए, पायलट तो आ जाते हैं जैक कर लिया, ये वही हाल है इनका भी, सेम यही हाल है, पायलट तो वापस आ गए ना। ओ भाई पायलट के जहाज छोड़ के आए वो किधर है,
पायलट जहाज का है,
मतलब पायलट तो जैक कर गए हमें ही पता है, पायलट आ गए वापसी, जहाज कितने
तो जहाज के नाम भेजिया सी।
ये आपने भी अभी थोड़ी देर पहले ना सेम टैक्टिक्स यही।
नहीं मैंने वो नहीं की, मैंने तुमको कहा है कि वो जो एक्सरसाइज वाला स्लीवलेस होता है वो पहन के ऊपर जैकेट लगाओ, तो
जैकेट आपने बाद में डाली।
नहीं तुम बात सुनते नहीं हो ना, बीच में भाजी मार देते हो
भाजी।
हाँ
जनाब अब आप लोग फैसला कर सकते होंगे, 12 दिन के पायलट सारे आ गए, इनसे सिर्फ सवाल ये पूछे शारजा जी से भी
जहाज कहाँ है,
जहाज किधर है,
वो मैंने छुपा के रखे किसी खास बड़े मकसद के लिए वो जहाज निकाले जाएंगे।
ये जहाज ऊपर से ऊपर ही चलेगा,
ऊपर से ऊपर चलेगा, गायब हो गए उसके अंदर,
स्वर्ग पहुंच गए,
स्वर्ग पहुंच गए,
यही सही वर्ड यूज
किया, स्वर्ग। हाँ हाँ जन्नत मीन्स
जन्नत, हाँ पैराडाइज,
स्वर्ग में पहुंच
वहां मिलेंगे,
या जो ऊपर, या ऊपर वो जो थे ना वो जो बादल थे उन्होंने खींच लिया ऐसे करके, फ्रांसीसी थे ना,
फ्रांसीसी
टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी,
बहुत हाई थी, वो सात आसमान ऊपर निकल गए,
ऊपर निकल गए ऐसे ही है, यही चक्कर है।
लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दिया है ना कि यार पायलट तो सारे आ गए, उस पर मुझे थोड़ा सा वो पायलट तो आ ही गए होंगे, जहाज की तरह,
हाँ जहाज,
ठीक है ना। तो चले जनाब खबरों के लिए, आप बस थोड़ी देर में खबरों के लिए लगते हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ इनकी आवाज, मेरी आवाज को आप लोगों को इनकी आवाज आपको सही नहीं सुनाई दे, तो 6478724900 डायल कीजिए, आपको क्रिस्टल क्लियर इनकी आवाज सुनाई देगी। तो 6478724900 अगर आप ऑफिस में तो eawaz.com, और घरों पर तो जनाब ई आवाज टीवी लगा लें, तमाम ही आईपीटीवी बॉक्सेस पर आप ई आवाज टीवी देख सकते हैं 24/7। चलें जनाब खबरों की तरफ चलते हैं।
अच्छा जी हम आपको बताते हैं, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह। आपको पता ही है होम और ऑटो इंश्योरेंस देते हैं, पायल ज्वेलर्स और असलम भाई होते हैं, उनके पास जाएं, आपको कुछ भी अच्छा ज्वेलरी चाहिए तो मिलेगा। और फैसल चट्टा उनके हैं विलेज टेस्ट, दो रेस्टोरेंट्स, वहां पे जाके खाने में एंजॉय का मजा लें। इसके अलावा जो अगर दांतों के लिए जाना है तो डॉक्टर नाजिया रहमान जबरदस्त आपको दांतों की सुविधाएं देते हैं। और अगर आपको अपना ट्रक का हेल्थ अच्छा रखना है तो क्विक ट्रक ल्यूब QTL के पास जाएं, और अच्छे कपड़ों के लिए आप जाइए जो है स्पीयर एंड मके के पास, ठीक है जनाब। और अगर आपको बंडल डील्स चाहिए है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के तो सुल्तान भाई के पास ब्रांडन टीवी एंड अप्लायंसेज। अच्छा जनाब सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कॉर्नी साहब जो है उन्होंने एक सिम्बॉलिक ऑर्डर जो है वो साइन किया है, और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि हमारी प्रायोरिटीज जो है वो मिडिल क्लास के लिए जो टैक्सेस काटना है वो है। आज उनकी फर्स्ट मीटिंग थी अपनी कैबिनेट के साथ ऑन पार्लियामेंट हिल, और अपने बिल्कुल कैबिनेट के मेंबर्स के साथ वो सराउंडेड थे, और उन्होंने ये नोट साइन करके डायरेक्ट किया है मिनिस्टर्स को कि ये इसको प्रिपेयर करें लेजिस्लेशन को टू बी टेबल्ड फर्स्ट थिंग जब जो है लेटर दिस मंथ पार्लियामेंट जो है वो वापस आती है। उन्होंने कहा जी कि जो हम जो है अभी काम कर रहे हैं इसके ऊपर ताकि 1 जुलाई तक सारा काम हो जाए, और ये जो हमने प्रॉमिस किया था ये जो टैक्सेस को रिड्यूस करने के लिए 22 मिलियन कैनेडियंस के लिए उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। कर्णी साहब ने कहा कि हम जो है लोअर करना चाहते हैं पर्सनल इनकम टैक्स रेट को बाय 1%, और इससे जो फैमिलीज हैं उनको तकरीबन $840 पर ईयर जो है सेविंग्स आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं फिलिप शैम्पेन, उन्होंने भी कहा जी कि ये बहुत ही मेजर मूव है, और लिबरल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे ये जो लेजिस्लेशन है, और हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन भी इसके अंदर हमारे साथ जो है सपोर्ट करे इसको। और उसके बाद जो है वो बहुत सारे जो आज बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग, तो कर्णी साहब के साथ तो सारे मिनिस्टर्स और दूसरे जो कैबिनेट के मेंबर्स थे बड़े ही उनके साथ एक्साइटेड थे, और वो जा रहे थे और कह रहे थे कि अब हम जो हमारा काम कुछ करने का है जल्दी वो हम अब जल्दी जल्दी उनको जो है वो करेंगे ताकि कैनेडियंस की लाइफ में अच्छी बेहतरी आ सके। जो कार्नी साहब है उन्होंने 28 कोर मिनिस्टर्स रखे हैं, और इसके अलावा 10 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो हैं उनके भी अनाउंसमेंट्स किए हैं। इसके अलावा 24 जो है न्यू फेसेस हैं, कुछ पुराने वाले एक्सपीरियंस फेसेस भी हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है May 26 को वापस आएगी और ये बहुत ही अगेन हिस्टोरिक मौका होगा क्योंकि किंग चार्ल्स III जो है डिलीवर करेंगे स्पीच फ्रॉम थ्रोन एक दिन के बाद, और जो शम्पेन साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि जी ये जो सेरेमनी है इसके बाद हम बहुत सारे इकोनॉमिक जो है डिसीजंस लेंगे और आपको बताएंगे। पीएफ अलिया साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि ये गवर्नमेंट जो है अभी तक लेकर नहीं आई है बजट, तो उसको बजट लाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बैड सिग्नल भेज रहा है इन्वेस्टर्स को और उनकी क्रेडिट रेटिंग जो है हमारी उसकी नीचे आ सकती है। उन्होंने कहा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पार्लियामेंट हिल पे और उन्होंने कहा कि जी कर्णी साहब जो है वो मेरे बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं, मैं बिल्कुल उनको ऑफर कर रहा हूं कि मेरे बहुत सारे आइडियाज अब स्टील कर लो यानी चोरी कर लो और ये जो वेस्टफुल स्पेंडिंग है कंसल्टेंट्स के ऊपर और फॉरेन एड के ऊपर इसको कट करो और मिडिल क्लास जो है उसको टैक्स कट्स जो है वो दो। उन्होंने कहा जी कि ये जो प्लान है मुझे लगता है कि उनके पास भी एक प्लान होगा, ये भी एक प्लान है, तो प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस सिर्फ किया जा सकता है बजट की सूरत में, तो उनको चाहिए कि वो जल्दी से इसको इंट्रोड्यूस करें। आपको पता ही है कि 2020 में पैंडेमिक जब आया था तो कोई बजट नहीं अनाउंस किया गया था, तो इसलिए शायद वो कुछ किसी खास तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे थे। फिलिप चैंपियन साहब जो है उन्होंने कहा जी कि हम अभी तो बजट नहीं रखेंगे, हम जो है फॉल इकोनॉमिक जो अपडेट है उसमें ये सारे अपने डिटेल्स बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेकिन सीआरए को कहा है कि 1% रिडक्शन टू लो इनकम टैक्स ब्रैकेट के जो लोग हैं उनको बिल्कुल आप ये इंट्रोड्यूस कर दें 1 जुलाई से, और ये वो कहते हैं जी कि जैसे कि हमने आपको भी बताया कि जो एक जो एवरेज 2 इनकम फैमिली है उसको $840 एनुअली सेव करेंगे। फोर्ड साहब कह रहे हैं जी कि वो अब फोर्ड साहब ने कह नहीं रहे हैं, ने कहा था आज सुबह कि हम अपना जो पोस्ट इलेक्शन बजट है वो आज लेकर आ रहे हैं जो कि अभी उन्होंने 4 बजे के करीब अनाउंस किया है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पीटर बेथलन सेल्वी उन्होंने ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो दिया है, और आपको बताइए कि ये 221 पेज का इनका जो पिछले साल आया था जो बजट उसके अंदर कोई भी वर्ड टैरिफ नहीं था। अब इस वक्त जो है ये बजट में बहुत सारे टैरिफ से रिलेटेड चीजें जो है इंट्रोड्यूस की गई हैं हेल्थ के लिए, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए, खासतौर पे ये जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए कि आपको पता ही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब नहीं आ रहे, उन पर रोक लगाया तो उनके काफी प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो खत्म किए गए हैं। अच्छा, ये अभी तक जो है फोर्ड गवर्नमेंट 6 बजट्स जो है वो पेश कर चुकी है लेकिन अभी भी उन्होंने बैलेंस्ड बजट नहीं दिया है, और इस बीच में अनएम्प्लॉयमेंट जो है और जॉब लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यही टैरिफ्स की वजह से। बजट्स जो होते हैं वो 3 साल का फोरकास्ट लेकर चलते हैं, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट अगर इन्होंने बजट बैलेंस किया तो 2027-28 में होगा जब ये अपना 9th बजट पेश कर रहे होंगे। बजट में क्या क्या गुडीज दिए गए हैं वो हमारे जो है वेबसाइट पर कल सारी डिटेल होगी उसकी, तो आप उसका जो है उसमें डिटेल्स पढ़ सकते हैं। मैनिटोबा की गवर्नमेंट जो है उसने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन व्हाइट शेल प्रोविंशियल पार्क क्योंकि बेतहाशा आग जो है वहां पे लग गई है ईस्टर्न मैनिटोबा में। प्रीमियर वैप किनू जो है उन्होंने कहा है लोगों को कि भई ये इवैक्यूएट करें आप जो जो आपको इलाकों को बोला जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि 2 दिन पहले अभी a day before जो है 2 लोगों की डेथ हुई है यहां पे आरएम ऑफ लैक ड्यू बने में, और आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है ये जो है सारी फायर। आज सुबह 9 बजे इन्होंने फिर कहा कि बहुत सारा जो एरिया इस पार्क का वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, लोग वहां पर ना जाए, और बहुत सारा जो उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर है जैसे कि कॉटेज सब डिविजन्स है, कमर्शियल एरियाज है, ट्रेल्स, बीचेस, कैनू रूट्स है, कैंप साइट्स है, उसकी तरफ आप बिल्कुल नहीं जाए, और अगर आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप इन पर्सन कॉल कर सकते हैं @204-340-6769 @204-340-6769, और पार्क जो है वो बिल्कुल बंद रहेगा जब तक कि ये फायर कंटेन नहीं होती है। अल्बर्टा जो है जी अल्बर्टा के अंदर तो कुछ अजीब ही कारोबार चल रहे हैं क्योंकि जो प्रीमियर डैनियल स्मिथ हैं वो कोई ना कोई लेजिस्लेशन जो है उनकी बात करती हैं। ये 11th hour चेंज जो इन्होंने किया है कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन में, तो उसके लिए जो फर्स्ट नेशंस हैं बहुत ज्यादा शोर मचा रही हैं। आपको बताइए कि बहुत अरसे से ये कह रही हैं कि जी हम रेफरेंडम लेकर आएंगे, और कहती हैं वैसे कि मैं ये चाहती नहीं हूं कि मैं कनाडा को छोड़ के हमारा प्रोविंस जाए, हम कनाडा के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन एक रेफरेंडम भी कराना है। जब कनाडा के साथ रहना है तो फिर रेफरेंडम क्यों कराना है, यानी मुझे ये खाना भी और नहीं भी खाना है, मतलब आई मीन व्हाट आर यू ट्राइंग टू से राइट। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि जी हम एक रेफरेंडम कराना चाहते हैं कि जी ये जो है हम लोग जो है कनाडा के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। अब इसके ऊपर बहुत सारा बैकलैश जो है इंडिजिनस नेशंस का आया है। जस्टिस मिनिस्टर मिकी एमरी जो है उन्होंने कहा कि यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो उनको सुनने चाहिए कंसर्न्स फर्स्ट नेशंस के। स्टर्जियन लेक क्री नेशन के जो चीफ हैं शेल्डन सनशाइन एंड मिकी स्यू क्री फर्स्ट नेशन के जो चीफ हैं बिली जो टकोरो उन्होंने कहा है जी कि बिल्कुल हम तो इसके ऊपर साइन नहीं कर सकते। तो उसने कहा जी कि हम कुछ एक अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं ताकि सिटीजन इनिशिएटेड रेफरेंडम लाया जाए। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो अपने वर्ड्स के हेर फेर किए हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं एंड इट्स अ वेरी बैड थिंग। गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सुन नहीं रही है लोगों की कि वो क्या चाहते हैं। इसके अलावा जो एनडीपी के इंडिजिनस रिलेशंस के क्रिटिक्स हैं ब्रुक्स आर कैन पॉल उन्होंने भी कहा है जी कि ये जो है आप चेंज कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ऐसा ही खाली आपने वर्ड्स इधर उधर जो है वो किए और आपके ऊपर ये जो है एक लीगल जो है आपके ऊपर एक होना चाहिए मुकदमा चलना चाहिए और ये बड़ा कंडेमेबल है जो कुछ आप कर रहे हैं। डेनियल स्मिथ है जो वो कहती है कि जी मेरी जो प्रोविंस है वो ऑयल एंड गैस रिच है और लिबरल पार्टी जो है सेंटर पे जो बैठी हुई है बड़े अरसे से उसने हमें हमारा फेयर शेयर नहीं दिया। पता नहीं फेयर शेयर का क्या मतलब है बाजी। तो वो कह रहे हैं हमारा नहीं दिया है और इसलिए जो है वो मैं उसके बात कर रही हूं। अलबत्ता मैं जो अल्बर्टा के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है मैं चाहती नहीं ग्रो करूं। अरे आप तो बीज बो रहे हो ना उसके सेपरेटिस्ट मूवमेंट के, आप तो ये बिल लेकर आए हो रेफरेंडम का, तो फिर अभी आप कैसे कह रहे हो। बहरहाल जी ऐसे ट्रोनो के अंदर जो स्पीड कैमराज हैं जी वो बेतहाशा जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। तकरीबन 300 टाइम्स उनको टारगेट दिस ईयर किया गया है। सिटी स्टाफ जो है उन्होंने कंफर्म किया है कि तकरीबन 325 कैमराज को वेंडलाइज किया गया है इन्वॉल्विंग ऑटोमेटेड स्पीड एनफोर्समेंट कैमराज सो फार इन 2025 और इनकी कुछ की तो हालत इतनी खराब है कि बियॉन्ड रिपेयर है। ये स्पीड कैमराज जो है 75 से बढ़ा के 150 कर दिए गए थे क्योंकि ट्रोनो ने कहा था कि बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं और स्पीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन लोगों का बड़ा गुस्सा है। ज़ाहिर है लोगों के पास पैसे नहीं है खाने को तो वो जब वहां से बेख्याली में अपनी परेशानी में गुजरते हैं तो उनको स्पीड कैमरा मिलता है। खासतौर पर जो ये जो पार्क साइड ड्राइव एंड एलोनक्विन एवेन्यू है इसने तो तकरीबन 66,000 टिकट्स इशू किए हैं। तो ये बेतहाशा दफा लोगों ने जो है तोड़ा है इसको और पुलिस ने बहरहाल अभी इन्वेस्टिगेशन बिठाई है और 2024 में भी 12 जो थे कैमराज वेंडलाइज किए गए थे और हर किसी की रिपेयर के ऊपर $10,000 जो है पर यूनिट आए थे। तो लोगों का गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। अच्छा जनाब ट्रंप साहब जो है अपनी लास्ट लेग जो है मिडिल ईस्ट ट्रिप की उसमें वो यूएई पहुंच चुके हैं अबू धाबी में है और उन्होंने वहां पे एड्रेस किया है यूएस की जो आर्मी मैन हैं थे एट अल उबेद अल एयर बेस के ऊपर आउटसाइड दोहा यानी कि यूएई पे जाने से पहले और उन्होंने बहुत सारे उनको डील्स बताए जो उन्होंने कतर में किए हैं। अब जब कतर में थे इससे पहले कि वो यूएई के निकलते मुकेश अंबानी साहब जी जो इंडिया के बिलियनियर हैं वो उड़ के गए हुए थे दोहा में उनके साथ मीटिंग करने के लिए और अपेरेंटली जो डिनर अमीर ऑफ कतर ने दिया था लुसेल पैलेस दोहा के अंदर उसके अंदर भी जो है ये मौजूद थे। उन्होंने बातचीत की, जाहिर है कि भाई बिजनेसमैन है तो बिजनेस में वो भी बिलियनियर हैं तो बिजनेस चलाना चाहते थे। बहरहाल जब यूएई में जी पहुंचे ट्रंप साहब तो प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो है उन्होंने इनको जो है ग्रीट की और फिर उसके बाद ये शेख जायद ग्रैंड मॉस्क जो है बड़ी वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड बड़ी खूबसूरत है अगर आपने नहीं देखी जरूर जब दुबई जाएं तो आप देखें वहां पे ये चले गए। फिर इन्होंने डिनर लिया एट कसर अल वतन प्रेसिडेंशियल पैलेस इन अबू धाबी में और ट्रंप साहब से यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि ये जो यूक्रेन और इसकी जो बातचीत चल रही है रशिया की तो उसके अंदर जो है पुतिन साहब तो नहीं गए तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि जो है वो मैं नहीं जा रहा था तो पुतिन ने तो जाहिर है कि वहां पे नहीं आना था और बच्चों ने बड़ा इनके ऊपर वेव किया यूएई और यूएस के फ्लैग्स लगाए और फिर ये बैठे जो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ और इनको फिर एक मेडल ऑफ ऑनर भी दिया गया। ट्रंप साहब जो कतर में थे यूएई में आने से पहले तो उन्होंने कहा जी कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मैंने जो हैं वो डील्स किए हैं कतर के अंदर और उसकी वजह से जब ये अनाउंसमेंट आई तो ऑयल की प्राइसेस 3% जो हैं वो ऊपर चली गई और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि ईरान जो है उसके ऊपर हम जो है कोई भी आर्मी से हमला नहीं करेंगे। ईरान के साथ अभी तक 4 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ईरान ने कहा है कि जैसे कल सैंक्शन इधर लगा दिए थे तो कि हम जो है वो बिल्कुल इनकी ब्लैकमेलिंग फील नहीं करेंगे यानी कि उसकी परवाह नहीं करेंगे। एडवाइजर टू ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाए अली शमखानी जो है उन्होंने भी कहा कि जी ईरान के साथ बिल्कुल हम जो है यूएस के साथ हम बिल्कुल ईरान जो है बातचीत करना चाहता है और अगर ये सैंक्शन उठा देंगे तो ये जो स्टॉक पाइल्स ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है उसको भी हम रोक देंगे। तो ट्रंप साहब ने कहा कि जी ईरान को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए कतर के जो अमीर हैं शेख तमीम बिन हामद अल थानी, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रेस किया कि भाई इसके ऊपर जो है आप चढ़ाई नहीं करो, यानी कि आर्मी का अटैक आप इसके ऊपर नहीं करो। ट्रंप साहब ने कहा जी कि यूएस जो है वो चाहता है कि वो भी चाहता था कि गाजा जो है उसको एक फ्री जोन बनाया जाए, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि अगर हूतीज ने अटैक किया तो उनके ऊपर अटैक जो है यूएस का जारी रहेगा। इसके साथ साथ न्यूज ये भी आई थी रियाद से कि जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने जो है बहुत ज्यादा एतराज किया जो इसराइल जो है उसका जो एटीट्यूड है पैलेस्टीनियंस के साथ। पुटिन साहब जो है जी उन्होंने एक लो लेवल डेलीगेशन जो है भेजा है टू डिस्कस विद यूक्रेन इन तुर्की, और उन्होंने कहा है जी कि इंस्टेड वो खुद जो है वो उससे जेलेंस्की से मिलने के लिए नहीं गए हैं। जेलेंस्की साहब जो है वो तुर्की के अंदर मौजूद हैं, उधर उनकी मुलाकात जो है वो हुई थी उनसे जो तैयब अर्दोगान साहब भी हैं। रशिया ने कहा कि ये जो मीटिंग है ये इस्तंबुल के अंदर है, लेकिन तुर्की ने कहा कि इस तरह की कोई मीटिंग का हमारे पास कोई स्केड्यूल नहीं है। अलबत्ता जब जेलेंस्की साहब आए बहरहाल तो उन्होंने कहा जी कि हम ये जो है वॉर को रोकने के लिए ही इधर बातचीत करने के लिए आए हैं, और यही उन्होंने बात जो है अर्दोगान साहब को भी की कि रशिया के लिए, और उन्होंने कहा था कि अगर पुटिन साहब आएंगे तो मैं खुद भी आऊंगा। तो अब वो इधर पहुंच गए हैं और वो उनका हाई लेवल डेलीगेशन रशिया का आया है, तो वो कह रहे हैं उनसे जब पूछा गया कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, मैंने तो पहले ही कहा था अगर डिस्कशन वॉर को रोकने पे होगी तो मैं यहां पे बिल्कुल तुर्की के अंदर आऊंगा और हम सीरियस टॉक इसके ऊपर करना चाहते हैं और हम बैठना चाहते हैं। इससे पहले जो है ट्रंप साहब भी इनसे काफी खफा थे, वो कह रहे थे कि तुम दोनों में से कोई भी ये सीरियस नहीं है स्टूपिड वॉर को रोकने के लिए, तो वो कह रहे हैं जी कि मैं बिल्कुल जो है वो सीरियस हूं। अच्छा जनाब देखो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो कैसे चलती हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो हैं एलेक्स जोन्स, उन्होंने जनाब एक मई 9 का वीडियो ऑफ अ ट्रेन जिसके के अंदर तीन यूरोपियन लीडर्स थे, प्रेसिडेंट मैक्रॉन, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स और यूके के प्राइम मिनिस्टर कार्ल स्टॉर्मर, तो उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि ये लोग तो जब इकट्ठे हुए थे तो ये ड्रग्स यूज कर रहे थे, और उसने उसकी फोटोग्राफ डाली और उसमें उन्होंने कहा जी कि जिसमें ये तीनों हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं बातें कर रहे हैं और बड़े जो है वो जैसी किस्म के मूड के अंदर है, तो वो वीडियो दिखा रहा है और वो कह रहा है ये देखो मैक्रॉन जो है वो व्हाइट सा एक थैला सा है वो उठा के जो है टेबल के ऊपर से साफ कर रहा है, वो जो टेबल है उसमें देखा जा सकता है कि कुछ ब्लू फोल्डर्स पड़े हैं, दो ड्रिंक पड़े हैं ग्लासेस की और एक व्हाइट सब्सटेंस पड़ा हुआ है। अच्छा अब जब इसने ये कहा और ये बातें लिखी तो इस पोस्ट को 29.5 मिलियन टाइम्स जो है व्यू किया गया ऑन मई 13, और इसके अंदर इसने बहुत प्रमोट किया ड्रग यूज का नैरेटिव के साथ, शायद ये बड़े लीडर्स ड्रग यूज करते हैं। अब जब AFP और AP ने बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर किया तो उनको पता चला कि जिस वक्त वहां पे जर्नलिस्ट गए इनकी तस्वीरें लेने के लिए तो उस वक्त वो एक गंदा सा टिश्यू पेपर व्हाइट कलर का टेबल पे पड़ा था, तो उनको लगा होगा मैक्रॉन साहब को कि शायद तस्वीर अच्छी ना आए तो उन्होंने वो टिश्यू पेपर उठा के जो है अपने हाथ में मुट्ठी में पकड़ लिया था, देवर नो ड्रग्स। तो बस बचें जनाब ये सोशल मीडिया से बचें। पुलिस इन यूके जो है उसने अब तीन लोगों को कन्विक्ट किया है फॉर प्लानिंग अटैक्स ऑन मॉस्क्स एंड सिनागॉग्स, और ये जो हैं ये इनके नाम हैं ब्रोगन स्टुअर्ट एंड मार्को पिट्जेटू, ये दोनों जो हैं 25 इयर्स के हैं, और क्रिस्टोफर रिंग रोज उनकी 34 इयर्स एज है, और इनको गिल्टी माना गया, इन्होंने तो अपने आप को गिल्टी नहीं माना लेकिन इनको माना गया है और उनके ऊपर कन्विक्ट इनको किया गया है फॉर ऑल चार्जेस बाय ज्यूरर्स एट शेफील्ड क्राउन कोर्ट। इन्होंने कहा जी इनके बारे में कहा गया लॉयर्स की तरफ से कि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये बहुत राइटफुली इनको कन्विक्ट किया गया है फॉर ये, और इनको टेररिज्म चार्जेस कहना चाहिए क्योंकि ये ग्रुप जो है ये रेसिस्ट व्यूज खाली शो नहीं करता है बल्कि एडवोकेट करता है वायलेंस ऑफ एक्सट्रीम राइट विंग माइंडसेट, और टेलीग्राम चैनल जो है जिसमें आयन सॉल्ट 14 है उसको ये यूज करता है लोगों को खराब करने के लिए। इन्होंने बड़ी कोशिश की थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को भी मारने के लिए, और ये टॉर्चर करने के लिए इन्होंने प्लान्स बनाए थे इमाम्स जो हैं डिफरेंट मस्जिद्स के। तो ये इनकी कॉन्स्पिरेसी है कि वाइट्स जो हैं वो सुपीरियर है दूसरे रेसेस से, और बड़े कॉन्स्पिरेसी थियरीज चलाते हैं कि मुस्लिम और इमिग्रेंट्स जब से यहां पर इंग्लैंड के अंदर आए हैं तो वेस्ट का जो शक्ल है वो खराब हो गया है, तो इस चीज को काफी ये लोग जो है बढ़ावा देते हैं। और जनाब आज है 15th of May और 15th of May में हम बहुत ही अफसोस के साथ याद करते हैं नकबा डे, जब मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको एथनिकली क्लेंज कर दिया गया था 1948 में बाय ज़ायनिस्ट जो के आए थे वही एग्जैक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी वाली के हम जी मुगलों के साथ जो है ट्रेड करने आया और फिर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था, बिल्कुल उसी तरह के पैलेस्टाइन में हम जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर पूरे पैलेस्टाइन पे, तो बहुत ज्यादा एथनिक क्लेंजिंग। तो ये हॉरिफिक जो इवेंट्स है इनको हॉलोकॉस्ट के साथ जो है वो मैच किया जा सकता है, और अभी भी इसराइल की रिलेंसलेस वॉर जो है जिसमें हजारों ही पैलेस्टीनियंस को उन्होंने मारा, इट कंटिन्यूज, जिसको कि सजेस्ट किया जा रहा है कि मे बी दिस इज अनदर नकबा। नकबा का मतलब होता है, ये एक अरबिक वर्ड है और ये कैटेस्ट्रॉफी जो है उसका मतलब होता है, और ये ज़ायनिस्ट मिलिशिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया था 750,000 पैलेस्टीनियंस को फ्रॉम देयर होमलैंड टू एस्टैब्लिश इसराइल। लेट 1947 में यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली थी उसने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन 181 ऑफ टू पार्टीशन पैलेस्टाइन इन अरब एंड ज्यूइश स्टेट्स। अरब स्टेट्स ने रिजेक्ट किया था यूनाइटेड नेशंस का ये पार्टीशन प्लान और उन्होंने कहा था कि आपने डाका डाला है पैलेस्टीनियन स्टेट्स के ऊपर और ज़ायनिस्ट ने मिलकर, और जो कॉलोनियल पावर थी यूके, बेसिकली तो ये सारा जो है ना ये यूके का, ये ब्रिटेन का सारे स्यापे, ये पैलेस्टाइन का ये स्यापा है, ये जो हमारे कश्मीर का स्यापा है, और भी दुनिया में जिधर जिधर आपको स्यापे नजर आएंगे वो सब ये इनके फलस्ती, ये इनके गोरों के बिछाए हुए हैं। तो जी गोरों ने ये जिस वक्त किया तो उन्होंने कहा कि जी अरब वर्ल्ड ने कहा कि ये नकबा जो ये किया जा रहा है इसमें बहुत ज्यादा डेवस्टेशन आएगी, और March 10, 1948 को जो ज़ायनिस्ट हैगनत मिलिट्री ग्रुप था उसने अडॉप्ट किया था प्लान डैलेट और उसने कहा था कि हम कंप्लीटली क्लेंज करेंगे पैलेस्टीनियंस को। मंथ लेटर इन डायर यासिन विलेज ज़ायनिस्ट मिलिशिया जो था उसने को तकरीबन 100 के करीब औरतें बच्चे मर्द मारे थे, और फिर उसके बाद डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहा और अभी भी जो है वॉर में वो इंतहाई लोगों को जो है वो मार रहे हैं। इजरायली पार्लियामेंट के अंदर कुछ मेंबर्स जो हैं जैसे कि एरियल कैलनर जो कि लकूत पार्टी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो कहते हैं जी कि हाँ बिल्कुल सारे फलस्तीनियों को मार देना चाहिए, बिल्कुल एथनिकली क्लेंस इस लैंड को कर देना चाहिए ताकि यहां पर जो है पूरे के पूरे इलाके पर इसराइल का कब्जा हो जाए। May 5 को इसराइल ने अनाउंस किया था कि गाजा में दूसरा ऑफेंसिव वो एक नया शुरू करने वाला है, और उसने हजारों ही रिजर्विस्ट जो है अपने बुलाए थे, यानी कि जो रिजर्व इनकी जो मिलिट्री है उसको बुलाया था, तो अब ज्यादा जाहिर है कि और खतरा बढ़ गया है कि अब ये सेकेंड नकबा तो नहीं कहीं शुरू करने लगे, क्या करना है, यानी कि ऑलरेडी तो 60,000 से ज्यादा बंदा उन्होंने मार दिया एंड दैट इज अगेन द ऑफिशियल फिगर, तो अब और इससे ज्यादा एथनिक क्लेंजिंग जो है वो क्या करेंगे। हम यहां पे लेते हैं जनाब एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं वापस और आपसे जुड़ेंगे इंडिया पाकिस्तान एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स की खबरों के साथ।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
उस जिंदगी मुश्किल कर देता है, बाकी बातें एक तरफ। आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000 लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
Painters of GTA for your home paint or office paint, interior or exterior, popcorn ceiling ko remove karna, water damage, if there are yellow spots in ceiling, call Painters of GTA. Water damage mein agar yellow spots aapki ceiling pe hain, unko remove karke bedaag karenge. Texture style painting, which is the latest Italian style painting, ya wallpaper lagwana chahte hain, to call kijiye texture style painting ke liye Painters of GTA 647-271-1974. मोहम्मद सलीम 647-271-1974। 770 AM दिया नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बाखबर रहन दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर 6478724900।
जी तो इंडिया और पाकिस्तान की खबरों की तरफ हम चलते हैं, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स। आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में एग्री हो गया कि एक्सटेंड किया जाएगा यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर टिल अबाउट मे 18। दिस इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन बाय डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब। उन्होंने कहा जी कि ये डीजीएमओज जो है उन्होंने हॉटलाइन के ऊपर बात की थी एक दूसरे के साथ येस्टरडे, और जो पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और इंडियन काउंटर पार्ट जो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय, उन्होंने कहा है जो एक दूसरे के साथ हॉटलाइन पे बात किया है, तो उन्होंने इसके ऊपर जो है कहा है कि हम इसको बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ये सीज फायर हुआ था मई 12 को और दोनों की बातचीत हुई थी और इन्होंने कहा था कि मई 14 तक हम इसको बढ़ाएंगे। मई 14 को फिर इनकी बात हुई और इन्होंने कहा जी अब मई 18 तक हम इनको बढ़ाएंगे। वो कहते हैं जी कि ये जो सारे डिटेल्स उनसे पूछे गए कि हुआ क्या है, क्योंकि इंडिया तो मानने को तैयार नहीं है कि वो थर्ड पार्टी कोई मीडिएशन सीज फायर में थी। उन्होंने कहा जी मई 10 को एट 10:15 AM सरदार साहब कहते हैं मुझे एक फोन कॉल आया और ये फोन कॉल जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का था और उन्होंने कहा जी कि मेरी इंडिया से बात हो गई और वो सीज फायर के लिए तैयार है और उस वक्त हम लोग जो थे फेज वन ऑफ ऑपरेशंस में थे और वो कंप्लीट होने वाले थे, तो मैंने उसको कहा कि अगर इंडिया तैयार है तो पाकिस्तान भी तैयार है। तो उन्होंने कहा जी कि जो है, लेकिन मैंने उनको क्लियरली बताया कि ये वॉर इस्लामाबाद ने इनिशिएट नहीं की है, ये इंडिया की तरफ से शुरू की गई थी। उन्होंने सारी बात मेरी सुनी और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से बात करूंगा और ये सारी डेवलपमेंट्स बताऊंगा। तो यानी कि अब आप देखें कि दो लोगों की तरफ से, ये तीन बल्कि, मार्को रूबियो खुद कह रहे हैं, ट्रंप साहब कह रहे हैं और अब जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वो भी कह रहे हैं कि यस जो है अमेरिका की मीडिएशन थी और मोदी जी जो इसको मानने को तैयार नहीं है। अब उनकी क्या मजबूरियां थी, वो मजबूरियां तो हम सबको पता ही है, इफ यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस, क्योंकि ट्रंप साहब की बातें हर कोई तो नहीं मान रहा, जैसे कि प्यूटन ने तो नहीं मानी अभी तक, इसराइल के नतन्याहू ने तो नहीं मानी, प्यूटन साहब की और नतन्याहू साहब ने तो नहीं मानी, तो मोदी जी ने कैसे मान लिया उनका बात, है ना, सीज फायर के लिए। तो अभी किसी को बचाना चाहते हैं, ऑब्वियसली किसी को बचाना चाहते हैं उसके लिए, या कोई और चक्कर है हमको मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तो है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सक्सेसफुली 6 इंडियन जेट्स जो है वो गिराए हैं। आज उन्होंने छठे का भी जो है वो जिक्र किया और उन्होंने कहा जी कि इससे पहले तो 5 का जिक्र आ रहा था और आज उन्होंने कहा कि नहीं 6 गिराए हैं और ये सारे के सारे 6 तैयारे जो है मई 6 और 7 के बीच में गिराए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये प्रूफ है पीएएफ का, उनकी जो कॉम्बैट स्किल है, आज वो कामरा के जो है पीएफ की बेस उसके ऊपर थे और उस पर ये वो जो है बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 रफेल, 1 सुकोए जो SU-30 है, 1 MiG-29 एंड 1 Mirage-2000 जो है वो गिराया है। इसके अलावा 85 जो इंडियन ड्रोन्स थे उनको भी मार गिराया था, जिसमें कि एक इसराइली मेड हैरॉन UAV था और 84 जो थे वो हैरॉप थे, जाहिर है कि क्वाडकॉप्टर्स थे। इसके अलावा जो सर्वेलेंस ड्रोन्स थे वो भी गिराए गए थे और इसलिए भेजे गए थे कि सारे इलाके का जायजा ले और फिर उसके बाद जो है पोटेंशियल टारगेटिंग वो लोग कर सकते हैं। ट्रंप साहब ने ऑफकोर्स अनाउंस किया था कि जी हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर सीज फायर हुआ तो हम बहुत ज्यादा ट्रेड इनके बीच में बढ़ा देंगे, तो आज पाकिस्तान ने भी अनाउंस किया है कि बिल्कुल हम आपके साथ ट्रेड करने को तैयार है और 0 टैरिफ जो है बायलैटरल ट्रेड में आपके साथ हम करेंगे, यानी कि जो यूएस के गुड्स पाकिस्तान पे आएंगे उसके ऊपर 0 टैरिफ रहेगा। पाकिस्तान ने यह ऑफर उनको कहा है और उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल इस चीज को एक्सपैंड करना चाहते हैं मल्टीपल सेक्टर्स में, तो आप हमारे साथ बात करें। ये डेवलपमेंट उस वक्त आई है जिस वक्त सुबह न्यूज आई थी कि ट्रंप साहब जो है उसने जो ये ब्रोकर की थी सीज फायर, तो उसके ऊपर इंडिया ने ऑफर दिया था इनको कि हम यूएस के गुड्स के ऊपर 0 टैरिफ जो है वो अनाउंस करते हैं, क्योंकि सुबह यूएई जाने से पहले वो काफी ज्यादा गुस्से में थे ट्रंप साहब, क्योंकि एप्पल जो है वो प्लान कर रहा है एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाने के लिए इंडिया के अंदर, और जो है बिकॉज ऑफ द चीप लेबर एंड यू नो, तो वो बहुत गुस्से, वो कहते थे कि उन्होंने कहा कि एप्पल को बिल्कुल इंडिया के अंदर नहीं जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके इंसेंटिव में इंडिया के जो ट्रेड मिनिस्टर थे पीयूष गोयल, उन्होंने कहा जी कि हम 0 टैरिफ देंगे और अब ये एक ट्रेड डेलीगेशन भी लीड करेंगे टू यूएस ऑन मई 16 टू एडवांस ट्रेड टॉक्स। इंडिया जो है वो वन ऑफ द हाइएस्ट टैरिफ्स जो है वो लगाता है इंपोर्ट के ऊपर, और इसीलिए ट्रंप साहब इंडिया से जरा उनकी हटी हुई है, वो कहते हैं कि ये टैरिफ अब्यूजर है, तो शायद इसलिए उनको खुश करने के लिए अब जो है वहां पे जाएंगे। पाकिस्तान के कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज जो हैं वो इनफ हैं टू डेटर इंडिया, और उसके अंदर हमको सेल्फ इम्पोज न्यूक्लियर ब्लैकमेल का नैरेटिव यूज करने का जरूरत नहीं है। ये बात की आज फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन शफकत अली खान ने, और ये उन्होंने बात उस वक्त की जिस वक्त इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर एनर्जी के अंडर सर्वेलेंस होना चाहिए क्योंकि ये इंतहाई रोग स्टेट है, उन्होंने ऐसा करके कुछ बोला। इसके ऊपर पाकिस्तान फॉरन ऑफिस ने बोला, वो तो दुनिया को तो सारी को पता ही है कि रोग स्टेट कौन है ना, तो अभी आप बोलते रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके ऊपर फॉरन ऑफिस ने कहा यह इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स हैं और ये इनकी अपनी खुद की फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी शो करते हैं जो पाकिस्तान ने अभी इफेक्टिव डिफेंस दिखाया है इंडियन अग्रेशन के खिलाफ, और ये इनका इग्नोरेंस भी शो करता है क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि आईएईए जो है जैसी एजेंसीज जो हैं यूनाइटेड नेशंस की उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। बल्कि उन्होंने आईएईए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला कि आपको फिक्र होना चाहिए कि ये जो बहुत सारा न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव मटीरियल है ये इंडिया के अंदर कॉन्स्टेंटली इसको चोरी किया जाता है और इसकी इल्लिसिट ट्रैफिकिंग की जाती है। लास्ट ईयर ये सारी खबर आई थी, हमने आपको वैसे बताई थी। फॉरेन ऑफिस ने कहा कि 5 इंडिविजुअल्स जो है वो रेडियो एक्टिव डिवाइस के साथ जो उन्होंने चोरी किया था भाभला एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, वो फिर मिला था देहरादून से। उसके बाद एक गैंग था जिसके पास जो है बहुत हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल और टॉक्सिक सब्सटेंस कैलिफोर्नियम जो है वर्थ 100 मिलियन US डॉलर मिला था, जिसका रिपोर्ट भी आई थी 2021 में। फॉरन ऑफिस ने कहा कि ये जो बार बार हिन्दुस्तान के अंदर इस तरह के मामले हो रहे हैं इसका मतलब है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो बिल्कुल और उसके जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है वो बिल्कुल जो है वो हिफाजत में नहीं है, और इसका मतलब ये भी है कि वहां पे एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट जो है एग्जिस्ट करती है ताकि ये सारे मटेरियल्स वो इनसे खरीद सकती है। तो एक इन्वेस्टिगेशन बिठाना इनके लिए बहुत जरूरी है, और इसके अलावा उन्होंने इंडिया को कहा कि आप इन सारे जो मटीरियल्स हैं इनका सेफ्टी भी थोड़ा इंश्योर करो। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान जो है उन्होंने बोला कि एक डायलॉग चाहिए है पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर, और उन्होंने आज फिर से बिल्कुल कहा कि कोई इमरान खान बैकडोर जो चैनल पे जो डिस्कशंस हैं वो बिल्कुल नहीं कर रहे। कैटेगोरिकली आज उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था जिस वक्त ये अटैक पाकिस्तान पर हुआ था कि एक नेशनल डायलॉग बिठाने का जरूरत है, तो मैं जब उनके साथ अडयाला जेल में मिलने के लिए गया था तो खान साहब ने मुझे रेड नॉट दिया है कि बिल्कुल हम गवर्नमेंट के साथ इस सिलसिले में बात कर सकते हैं। वैसे भी जो सारे ये जो मसले है ये डिस्कशन के साथ ही होए गए, तो उन्होंने कहा जी क्या डिस्कशन आपकी हुई खान साहब से, उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक कभी भी पब्लिक में इंटरनल डिस्कशंस के बारे में नहीं बताया, वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और मैं भी कॉन्फिडेंशियल रखूंगा। इंडियन गवर्नमेंट जो है जी वो अब पुशबैक कर रही है अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो हैं और उनको डिटेन कर रही है अपने ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, और अर्लियर दिस मंथ 2 एयर इंडिया के जो प्लेन्स थे वो 300 अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स को, जिसमें के 200 औरतें बच्चे भी थे, लेकर गए थे अगरताला में इन त्रिपुरा, और इससे पहले उन्होंने गुजरात के अंदर भी इनको डिटेन किया था और गुजरात पुलिस ने 1000 सस्पेक्टेड बंगालीज को पकड़ा था फ्रॉम अहमदाबाद एंड सूरत टू, उन्होंने 95 को डिपोर्ट किया गया है था इन 2024। टिल अप्रैल 30th दिस ईयर 100 मोर वर डिपोर्टेड। बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो कंसर्न शो करते हुए एक लेटर लिखा था इंडिया को, और उन्होंने कहा था कि जी ये आपको एडहेयर करना चाहिए विद द एस्टैब्लिश्ड रिपैट्रिएशन मैकेनिज्म। ये क्या है कि आप जहाज भर भर के लोगों को भेज रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका कोई भी बांग्लादेश को जवाब नहीं दिया था, वो बहरहाल बंदे भेज रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जनाब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है अमंगस्ट ऑल एजेस, ये नहीं है कि किसी एक एज में, एंड इट स्टैंड्स एट 5.1% इन अप्रैल। अब आप कहेंगे कि 5.1% तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया जैसे बड़े मुल्क में 5.1% का मतलब है करोड़ों लोग, तो ये 5.1% छोटी नहीं है, ये बहुत ही हाई जो है वो रेट है। ये जो सारा डाटा है ये आज इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो मंथली पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे आता है उसमें ये सारी रिपोर्ट जो है ये लाई गई है। उसमें उन्होंने कहा जी कि आदमी जो है उसमें ये जो है रेट हायर है 5.2% कम्पेयर टू वुमेन 5%। जॉबलेसनेस जो बिटवीन 15 to 29 का एज ग्रुप है दैट स्टैंड्स द स्टैगरिंग 13.8%, अर्बन एरियाज में ये 17.2% है, रूरल एरियाज में 12.3%, अमंग वुमेन 15 to 29 अनएम्प्लॉयमेंट 14.4% है इन अर्बन एरियाज एंड 23.7% इन सिटीज। या 10.7% इन विलेजेस। डेटा ये शो करता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है अमंग 15 एंड अबव इज जस्ट अबाउट 55.6%, और वैसे ये तो अच्छा रेट है, एंड रूरल एरियाज के अंदर 58% है, अर्बन एरियाज में 50.7% है। इन फीमेल्स एज 15 एंड अबव ये जो है या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जिसको LFPR भी कहते हैं, दैट इज 38.2% इन रूरल एरियाज। तो ये जनाब काफी चिंता का बायस हो सकता है। वैसे भी मतलब है, वो कहते हैं कि जी बड़ी दौलत है, बड़ी इकोनॉमी है, हमने तो आपको वो सुजुकी मारुति के चेयरमैन का बता दिया था कि 6 लाख की गाड़ी नहीं ले सकता बेचारा आम आदमी वहां पे। तो वो जो दौलत शौलत वो जो नजर आ रही है वो गवर्नमेंट के तिजोरी में ही पड़ी हुई है, या चार लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, अंबानी, अदानी, मोदी जी, अन शाह साहब जो है वो मुझे लगता है अमित शाह साहब उन्हीं के पास है शायद, बाकी तो नजर नानी जो या फिर जो 10-12 उनके बिलियनियर्स है उनके पास है। अच्छा जनाब, रॉबर्ट डी नीरो साहब जो है वो कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे, जो इसका 78th एडिशन जो है वो यहां हो रहा है, और रॉबर्ट डी नीरो साहब ने बड़ा जो है ट्रंप साहब के ऊपर एतराज किया। उन्होंने कहा आर्ट जो है सच्चाई वही है, और ये एम्ब्रेस करता है डाइवर्सिटी, इसीलिए आर्ट थ्रेटन करता है ऑटोक्रेट्स और फैसिस्ट जो है ऑफ द वर्ल्ड एंड अमेरिकाज फिलिस्तीन प्रेसिडेंट। फिलिस्तीन का मतलब होता है बहुत ही यानी जो डेरोगेटरी वर्ड होता है जो कि यूज करते हैं कि बड़ा टायरेंट किस्म का जो ये प्रेसिडेंट है, इसने अपने आप को खुद से अमेरिका का जो है के और अमेरिका का और अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस का हेड बना लिया है, कट कर दिया है फंडिंग को और सपोर्ट नहीं कर रहा है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और एजुकेशन को, क्योंकि आपको पता ही है कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले अनाउंस किया था ट्रंप साहब ने कि जो हॉलीवुड है उसके ऊपर वो 100% टैक्स लगाएंगे अगर वो बाहर जाके फिल्में बनाते हैं, और इसी तरह आपको पता ही है यूनिवर्सिटीज के ऊपर बहुत खत्म करे, और ह्यूमैनिटीज वही जो DEI जो खत्म किया, तो वो तीनों चीजों की बात कर रहे थे रॉबर्ट डी नीरो। तो उन्होंने कहा जी कि जो है आप कनेक्टिविटी के ऊपर प्राइस नहीं लगा सकते, उसकी कनेक्टिविटी से उनका मतलब है कि उनकी बहुत सारी फिल्में मेक्सिको और कनाडा के अंदर बनती हैं, तो अब जाहिर है कि वो बेचारे अब फिल्में नहीं बना सकेंगे, क्योंकि अगर कनाडा और मेक्सिको में बनेंगे फिल्में या दुनिया के किसी और हिस्से में तो 100% टैरिफ उस पर लगाया जाएगा, तो उसके ऊपर वो आज बात कर रहे थे। ये रिपोर्ट एक आई है जी जस्टिन बीवर के बारे में कि वो अपने म्यूजिक राइट्स उन्होंने बेचे थे टू एस्केप फाइनेंशियल क्राइसिस। सोर्सेज के मुताबिक जो थे वो बिल्कुल ही वाज एट द वर्ज ऑफ फाइनेंशियल क्लैप्स इन 2022, और सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि उन्होंने कहा कि मैं अपने म्यूजिक के राइट सेल करूंगा। उनके फॉर्मर जो मैनेजर हैं स्कूटर ब्रॉन, उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी बैड आइडिया, और तुम्हारे अभी तुम बहुत अर्ली है तुम्हारे करियर में ऐसा करना, जो जाहिर है कि जो एज में ज्यादा लोग हो जाते हैं वो तो करते हैं, तुम अभी मत करो और जरा ठहर जाओ जनवरी 2023 तक, तुम्हें उस वक्त टैक्स ब्रेक मिल जाएगा। लेकिन उसने कहा कि मैं और वेट नहीं कर सकता और मैं साल के आखिर में इसको बेच देना चाहता हूं। ही इज द यंगेस्ट सिंगर टू सेल राइट्स ऑफ हिज म्यूजिक, और ये सारी की सारी कहानी जो है आप देख सकेंगे, नेक डॉक्यूमेंट्री आ रही है TMZ इन्वेस्टिगेट्स व्हाट हैपन टू जस्टिन बीवर, ट्रूडो नहीं जस्टिन बीवर, ठीक है जी, तो ये आप देख सकेंगे। कंगना रनावत साहबा जो है वैसे तो वो अपनी गलती कभी मानती नहीं है, आमिर की तरह बिल्कुल कभी अपनी गलती नहीं मानती है, लेकिन आज बहुत ही रेयर किस्म का वाकया होया कि जिसमें हमारी बाजी जो है उसने अपनी गलती मान ली। उन्होंने एक शेयर की थी एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल किस्म की ट्वीट, और उसके बाद फिर उन्होंने उसको जो है डिलीट कर दिया। होया क्या था इसके अंदर, उन्होंने एक जो है रीपोस्ट की थी ट्वीट अबाउट ट्रंप आस्किंग एप्पल सीईओ टिम कुक के जो है वो नॉट टू टेक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो टू इंडिया, जो कि अभी हमने आपको खबर सुनाया भी है। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या रीजन है क्यों ट्रंप साहब ने इनको रोका है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है लेकिन दुनिया में जो सबसे ज्यादा लीडर को प्यार किया जाता है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। बाजी इसके ऊपर तो मैंने अपने आप को ना छुरी मार लेनी है। तो वो कहती है जी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार जिस लीडर को किया जाता है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, और ट्रंप साहब अपनी सेकंड टर्म में है, मोदी जी अपने थर्ड टर्म पे है, ट्रंप साहब अल्फा मेल है लेकिन पीएम हमारे जो है मोदी जी वो सब अल्फा मेल का बाप है। अच्छा जी, अब जब इन्होंने ये सोशल मीडिया पे डाला, बाजी का सोशल मीडिया बेताशा, इस पे व्यूज आने शुरू हो गए, तो फिर इन्होंने कहा जी कि मुझे बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जो हैं JP नड्डा साहब उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि ये मुनासिब नहीं है, तो फिर मैंने उसको डिलीट किया। अब बाजी आपको पता नहीं है आपकी कंट्री कितने मेजर डील्स अभी करना चाहती है, पीयूष गोयल साहब जो है वो उधर अमरीका जाना चाहते हैं, तो एप्पल को वो लाना चाहते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, और आप सारी चीजें खराब कर रहे हो, अपने पीएम को कह रहे हो अल्फा है, अल्फा सबका बाप है, व्हाट इज दिस। तो वो इसलिए वो कहती है मैं बहुत रिग्रेट करती हूं अपना पर्सनल ओपिनियन देने के लिए। जरा सोच समझ के, बची थोड़ी रही हो आप और फिर ऊपर से आप पॉलिटिशियन बन गई हो, तो थोड़ा सोच के बोला करो यार, व्हाट इज दिस। एनीवेज, फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, उन्होंने कहा जी कि वो टारगेट कर रहे हैं टू जनरेट $1 बिलियन फॉर विमेन्स वर्ल्ड कप टू बी प्लेड इन 2027। वो जो थे बात कर रहे थे ट्रंप साहब के साथ ही, उधर थे वहां पे सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम में रियाद में, वहां पे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमको विमेन फुटबॉल जो है उसकी ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए, और हम ये सारे का सारा फंड जो हम जनरेट करेंगे, पैसे री इन्वेस्ट करेंगे इन विमेन्स फुटबॉल डेवलपमेंट। 2023 में विमेन्स जो वर्ल्ड कप हुआ था जो कि ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में जॉइंटली हुआ था, उसके अंदर $570 मिलियन जो है जनरेट किए गए थे। लाहौर कनदर जो है जी, उसने अनाउंस किया है कि वो एक्सपीरियंस श्रीलंकन बैटर भानुका राजापक्षे जो है उसको रिमेनिंग पीएसएल 10 के जो मैचेस है उसके अंदर वो लेकर आ रहे हैं। ही रिप्लेसेज टॉम क्यूरन, और जो बाकी के मैचेस है वो इसलिए नहीं कर सकता टॉम क्यूरन क्योंकि उसका एंकल का इंजरी आ गया है। जो ग्लेडिएटर्स के रायली रूसो और फिन एलन है उन्होंने बहरहाल अपना जो है वो अवेलेबिलिटी दे दिया है, यानी ये क्वेटा ग्लेडिएटर्स की हम बात करें, ग्लेडिएटर्स में तो यानी कि क्लंदर्स के लिए दूसरे आगे श्रीलंकन और ग्लेडिएटर्स के लिए ये आगे। एंड जनाब एब्सोल्यूटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिनको के गवर्नमेंट का नॉड मिल गया है फॉर अपकमिंग व्हाइट बॉल टूर ऑफ पाकिस्तान के वो जा सकते हैं खेलने के लिए पाकिस्तान में 5 T20s। लेकिन वो कह रहे हैं अभी भी हमारे पास ऑफिशियल लेटर जो है वो नहीं आया है, जो कि जल्दी आ जाएगा। लेकिन वो कहते हैं जी कि हम प्लेयर्स के साथ भी बात करेंगे क्योंकि प्लेयर्स जो है कुछ रिलक्टेंट है ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। अब वही कहानी, वही ड्रामा फिर से अब ये लोग शुरू करें, ओ पाकिस्तान में बड़ा सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। भाईजान जब आपके मुल्क में मोर्चे निकले हुए थे तो उस वक्त भी तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम था ना, तो उसमें क्या हुआ था, कोई ऐसे हो जाता है कि जी आप गेम्स नहीं कर सकते। बहरहाल जी वो कहते हैं जी कि हम सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है तो हम पूछेंगे अपने प्लेयर्स से कि वो जा सकते हैं खेलने के नहीं जा सकते हैं। बांग्लादेश के प्लेयर्स जो हैं इस वक्त करंटली टूर कर रहे हैं यूएई का और वो वहां पे खेलेंगे 2 T20s ऑन May 17th and 19th। तो जनाब ये थी हमारी आज की सारी गर्मा गर्म खबरें,
ये थी अब तक की गर्मा गर्म खबरें और अब बस आज इसके बाद से सारी खबरें खत्म हो गई, मतलब बिल्कुल ही अब कोई खबरें नहीं सुनिएगा आप घर, अगर आप जा भी रहे किसी और चैनल पर खबरें नहीं सुनिएगा, बिल्कुल भी सुनिएगा, खबरें खत्म हो गई बस आज तक की, क्योंकि शाहजी जी ने सुना दिए तो खबरें जो है वो खत्म हो गई हैं। और अब जो है वो अगला सेगमेंट हमारा होगा टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक होगा, उसके बाद लियाकत मलिक साहब भूली बिसरी यादें लेकर प्रोग्राम आएंगे एवरी थर्सडे 7 PM पर हमारे रेडियो 770 और ई आवाज टीवी पर आते हैं, आप इसे सुन सकते हैं रेडियो पर और हमारी वेबसाइट eawaz.com पर। इसके अलावा ई आवाज टीवी तमाम आईपी टीवी बॉक्सेस पर मौजूद है, आप उस पर भी यह प्रोग्राम देख सकते हैं। शैल जी आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहें तो आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात
होगी। कल हमारी एक बहुत ही स्पेशल बंदे से मुलाकात होगी, आपको वो बताएंगे सारे डिटेल्स के पाकिस्तान ने जो अपनी एरियल सुपीरियरिटी दिखाई है वो कैसे दिखाई है, पाकिस्तान के पायलट्स की कैसी ट्रेनिंग होती है। तो यू आर गोइंग टू हियर राइट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ और आपको पता चलेगा और आपको खुशी होगी।
चले जनाब देखें, इन्होंने जाते जाते न्यूज दे ही दी, हालांकि मैंने कहा था न्यूज खत्म हो गई लेकिन ब्रेकिंग न्यूज उन्होंने आपको दे दी। तो इस ब्रेकिंग न्यूज को आप अब आपके लिए रहेगा कल तक के लिए ना कि कौन आ रहा है, क्या करेगा, क्या बताएगा कि पायलट तो आ गए वापसी जहाज कहां है। तो जनाब ये सब मजाक किया, आई नो ये सब सिलसिला मीम्स का और सारी चीजों को चल रहा है, लेकिन सवाल तो बनता है ना, पायलट तो आ जाएंगे सबको मालूम है लेकिन जहाज कैसे आएंगे, ये कितने आदमी थे, आदमी तो पूरे आ गए लेकिन आदमी गए कि सामान जो लेकर गए थे क्या वापस आ गया सामान, नहीं आया। पर चले जनाब अब लियाकत मलिक साहब को अपनी पोजीशन संभालने दें, वो जो है पहुंच चुके हैं स्टूडियो में, टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है वो लियाकत मलिक साहब के साथ हाजिर होंगे। अभी हमें जो है वो इजाजत लेते हैं, मैं आमिर अहमद आरफा मुजफ्फर साहब की तरफ से इजाजत लेते हैं, माजिद जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर नवदीप और वैष्णव की तरफ से भी इजाजत लेंगे। इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भूली बिसरी यादें लियाकत मलिक साहब का प्रोग्राम जरूर सुनिएगा और हमें जरूर इसका फीडबैक भी दीजिएगा।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
शफर जाइए तैयार, लीसास कॉस्मेटिक्स फिर से लाए हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स वाली बड़ी सेल।
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, डिजाइनर सनग्लासेस एंड चॉकलेट, हेयर केयर, नेल कलर्स और भी बहुत कुछ।
80% तक की सेविंग ऑन योर फेवरेट प्रीमियम ब्रांड्स, टॉम फोर्ड, बर्साचे, अरियाना ग्रांडे, अरमानी, अजारो, बर्बरी एंड मोर।
बस आपको आना है लीसास कॉस्मेटिक्स, 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, जस्ट ऑफ हाईवे 404 एंड 407 एंड क्लोज टू 401।
सेल इज फ्रॉम अप्रैल 26 टू मई 18, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। लीसास सेल यानी ज्यादा स्वैग फॉर लेस डॉलर्स। मदर्स डे गिफ्टिंग का भी एक्सेलेंट मौका। विजिट leesascosmetics.com।
तुहानू पर्सनल सपोर्ट वर्कर क्यों बनना चाहिए? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca/gopsw ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ।